नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अंशु अवस्थी से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी अवकाश कुमार को पटना का नया वरीय पुलिस अधीक्षक बनाया गया है। गृह विभाग ने 62 आईपीएस अधिकारियों का किया तबादला। ईडी ने संजीव हंस के करीबी अभियंता सुनील कुमार के पटना और बोधगया स्थित 4 ठिकानों पर की छापेमारी, कई दस्तावेज बरामद। और मौसम विभाग ने कहा अगले 2 से 3 दिनों में प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में शीतलहर चलने की संभावना। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। यह इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 117वीं कड़ी होगी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर प्रसारित किया जाएगा। इसके अलावा मन की बात का प्रसारण आकाशवाणी वेबसाइट तथा न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध होगा। मन की बात कार्यक्रम का आकाशवाणी, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी सीधा प्रसारण होगा। इसके तुरंत बाद मैथिली भाषा में इसका प्रसारण आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से किया जाएगा। इसी प्रसारण को दोबारा रात्रि 8 बजे से भी सुना जा सकता है। राज्य सरकार ने भारतीय पुलिस सेवा के 62 अधिकारियों का स्थानांतरण और पदस्थापन किया है। गृह विभाग की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार अवकाश कुमार को पटना का वरीय पुलिस अधीक्षक बनाया गया है। इसके साथ ही विक्रम सिहाग को पुलिस अधीक्षक ग्रामीण और के रामदास को नगर पुलिस अधीक्षक पूर्वी की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसके अलावा आनंद कुमार को गया, हृदयकांत को भागलपुर और सुशील कुमार को मुजफ्फरपुर का SSP बनाया गया है। अधिसूचना के अनुसार डॉक्टर इनामुल हक मेंगनू को अरवल, ललित मोहन शर्मा को वैशाली, हरि मोहन शुक्ल को कैमूर, उपेंद्र नाथ वर्मा को बांका, योगेंद्र कुमार को मधुबनी, विश्वजीत दयाल को मुजफ्फरपुर, अमित रंजन को सीतामढ़ी, मदन कुमार आनंद को जमुई और अंजनी कुमार को अररिया का पुलिस अधीक्षक बनाया गया है। इसके साथ ही राजीव मिश्रा को ATS का DIG बनाया गया है, जबकि पूर्णिया के IG राकेश राठी को पटना में IG तकनीकी संचार और IG EOU का अतिरिक्त पदभार सौंपा गया है। वहीं राजेश कुमार को मानवाधिकार आयोग का IG बनाया गया है। अधिसूचना के अनुसार नव प्रोन्नत सभी IG और DIG को नई जिम्मेदारी सौंपी गई है। प्रवर्तन निदेशालय ED ने IAS संजीव हंस से जुड़े मामले में पुल निर्माण निगम के सेवानिवृत्त अभियंता सुनील कुमार के पटना और बोधगया स्थित 4 ठिकानों पर छापेमारी की। प्राप्त जानकारी के अनुसार ED को छापेमारी के दौरान कई दस्तावेज मिले हैं। संजीव हंस पर मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले की जांच ED कर रही है। प्रदेश के नवनियुक्त राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान कल पटना आएंगे। अगले महीने 2 जनवरी को उन्हें राज्यपाल के पद की शपथ दिलाई जाएगी। राजभवन में आयोजित समारोह में पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति के विनोद चंद्रन उन्हें शपथ दिलाएंगे। केंद्र सरकार ने उन्हें हाल ही में बिहार का नया राज्यपाल मनोनीत किया है। इससे पहले वे केरल के राज्यपाल थे। जल संसाधन मंत्री विजय कुमार चौधरी ने विभागीय योजनाओं को समय पर पूरा करने और गुणवत्ता का ध्यान रखने के निर्देश अधिकारियों को दिया है। उन्होंने विभागीय समीक्षा बैठक में कहा कि राज्य में उपलब्ध नदी जल का अधिकतम सदुपयोग सरकार की प्राथमिकता में शामिल है। मंत्री ने कहा कि योजनाओं को निर्धारित समय में नहीं पूरा करने वाले संवेदकों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। प्रदेश के स्कूली छात्रों को सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता के लिए उन्हें यातायात नियमों की जानकारी दी जाएगी। इसके लिए स्कूलों की चारदीवारी पर यातायात नियमों की पेंटिंग के साथ स्लोगन भी लिखे जाएंगे। परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने बताया कि सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता और नियमों की जानकारी आवश्यक हो गई है। उन्होंने कहा कि पंचायत भवनों की दीवारों पर भी यातायात नियमों के संबंध में जानकारी लिखी जाएगी। श्री अग्रवाल ने कहा कि यातायात नियमों के प्रति जागरूकता फैलाकर सड़क हादसों को कम किया जा सकता है। प्रदेश में ई पंचायत बिहार पोर्टल के माध्यम से ग्रामीण विकास योजनाओं की जानकारी लेने की प्रक्रिया आसान बनाई गई है। योजनाओं की प्रगति और उसके लिए आवंटित राशि की जानकारी भी लोगों को उपलब्ध कराई जा रही है। पंचायती राज के निदेशक आनंद शर्मा ने बताया कि नई व्यवस्था के तहत आम लोग भी योजनाओं की प्रगति और आवंटन की जानकारी देख सकते हैं। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 12 अक्टूबर 2023 को ई पंचायत बिहार पोर्टल का शुभारंभ किया था। उन्होंने कहा कि यह पोर्टल जिला परिषद, पंचायत समिति और पंचायतों के लिए एकल मंच है, जहां सभी प्रकार की जानकारी अपलोड की जाती है। श्री शर्मा ने कहा कि इसके माध्यम से पंचायती राज संस्थाओं द्वारा डिजिटल हस्ताक्षर के जरिए विक्रेताओं और श्रमिकों को भुगतान करना संभव हो गया है। बिहार लोक सेवा आयोग की 70वीं संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा रद्द किए जाने की मांग को लेकर पटना के गर्दनीबाग में उम्मीदवारों का धरना प्रदर्शन जारी है। इधर पटना जिला प्रशासन ने जनसुराज पार्टी को गांधी मैदान में गांधी मूर्ति के पास छात्र संसद के आयोजन की अनुमति नहीं दी है। वहीं बीपीएससी ने एक बार फिर कहा है कि 13 दिसंबर को हुई 70वीं एकीकृत संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा रद्द नहीं की जाएगी। आयोग के परीक्षा नियंत्रक राजेश कुमार सिंह ने कहा कि पटना के बापू परीक्षा परिसर की रद्द परीक्षा अपने निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 4 जनवरी 2025 को आयोजित होगी। आयोग ने परीक्षा के संबंध में सोशल मीडिया पर चल रही खबरों को लेकर परीक्षार्थियों से गुमराह नहीं होने की अपील की है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR News_ पटना पर जा सकते हैं। पश्चिमी विक्षोभ के कारण देश के उत्तरी हिस्से के पहाड़ी इलाकों में भारी बर्फबारी हो रही है। इसका असर बिहार पर भी पड़ने की संभावना है। इससे कड़ाके की ठंड पड़ सकती है। मौसम विभाग के अनुसार कल से पटना सहित राज्य के अधिकांश हिस्सों में शीतलहर चलने की संभावना है। अगले 3 दिनों में तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट आ सकती है। इधर विभाग ने पूर्वी और पश्चिमी चंपारण, सिवान, सारण, मधुबनी और मुजफ्फरपुर समेत दर्जन भर जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के वैज्ञानिक ने बताया कि अगले 24 घंटों के दौरान राज्य के दक्षिण पश्चिम भागों के अधिकांश स्थानों में घना कोहरा और शेष भागों में हल्के से मध्यम स्तर तक का कोहरा छाए रहने की संभावना है।
29 दिसंबर के सुबह में राज्य के दक्षिण पश्चिम भाग में घने कोहरे एवं शेष भाग में हल्के से मध्यम स्तर के कोहरे का पूर्वानुमान है। अगले 2 दिनों तक राज्य के न्यूनतम तापमान में कोई विशेष परिवर्तन की संभावना नहीं है। तत्पश्चात अगले 3 दिनों के दौरान 2 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड की गिरावट का पूर्वानुमान है।
इधर मौसम विभाग की रिपोर्ट के अनुसार राज्य भर में अधिकतम और न्यूनतम तापमान अभी भी सामान्य से लगभग 4 डिग्री सेल्सियस ऊपर बना हुआ है। नए साल के मौके पर होने वाले जश्न और कार्यक्रमों को लेकर प्रशासन ने सतर्कता बढ़ा दी है। राजधानी पटना में किसी भी अप्रिय घटना को टालने के लिए प्रशासन ने कई सुरक्षात्मक कदम उठाए हैं। नए साल पर पटना स्थित संजय गांधी जैविक उद्यान के तालाब में बोटिंग बंद रहेगा, जबकि बैटरी चालित वाहनों का परिचालन नहीं होगा। प्रशासन ने चिड़ियाघर में अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती की है। इसके साथ ही राजधानी के सभी प्रमुख पार्कों में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई जा रही है। इधर पटना जंक्शन के पास स्थित महावीर मंदिर में श्रद्धालुओं की बढ़ने वाली भीड़ को देखते हुए मंदिर प्रशासन ने विशेष तैयारी की है। मंदिर प्रबंधन की ओर से प्रसाद की मांग को देखते हुए 20,000 किलो नैवेद्य की आपूर्ति का निर्णय लिया है। वहीं पटना जिला प्रशासन ने शराब पीकर हंगामा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई के व्यापक इंतजाम किए हैं। इसके लिए सभी चौक चौराहों पर 150 से अधिक पुलिसकर्मी ब्रेथ एनालाइजर के साथ तैनात किए जाएंगे। जेपी गंगा पथ, अटल पथ, बेली रोड, गांधी मैदान चौक आदि प्रमुख जगहों पर जवानों की तैनाती की जाएगी। प्रदेश में तत्काल पासपोर्ट बनाना अब आसान हो गया है। 18 वर्ष से अधिक उम्र वाले व्यक्ति को तत्काल पासपोर्ट बनाने के लिए अब 3 दस्तावेज ही देने होंगे। क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय के क्षेत्रीय पदाधिकारी स्वधा रिजवी ने बताया कि तत्काल पासपोर्ट बनाने के लिए पहले कई दस्तावेज मांगे जाते थे, लेकिन अब 2 से 3 दस्तावेज में ही पासपोर्ट बन जाएगा। इसके लिए आधार कार्ड, पैन कार्ड और फोटो पहचान पत्र देना होगा। गौरतलब है कि प्रदेश के सभी जिलों में पासपोर्ट सेवा केंद्र खुल गया है। गोपालगंज के मिंज स्टेडियम में खेलो इंडिया राष्ट्रीय जूनियर सब जूनियर बालिका खो खो प्रतियोगिता की शुरुआत हो गई। इसमें कर्नाटक, दिल्ली, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, पंजाब और बिहार की 15 टीमें भाग ले रही हैं। जिलाधिकारी प्रशांत कुमार CH ने 30 दिसंबर तक चलने वाली इस प्रतियोगिता का उद्घाटन किया। प्रतियोगिता का आयोजन बिहार राज्य खेल प्राधिकरण, बिहार खो खो संघ और जिला प्रशासन के संयुक्त तत्वाधान में किया जा रहा है। इधर प्रतियोगिता के पहले दिन कल जूनियर वर्ग में महाराष्ट्र ने पंजाब को 36-18 से पराजित किया, वहीं सब जूनियर वर्ग में दिल्ली ने गुजरात को 38-14 से पराजित किया, जबकि कर्नाटक ने मध्य प्रदेश को 36-6 से तथा जूनियर वर्ग में दिल्ली ने बंगाल को 31-25 से हराया। सिपाही पद पर भर्ती के लिए चल रही शारीरिक दक्षता परीक्षा में एक फर्जी अभ्यर्थी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। केंद्रीय चयन परिषद सिपाही भर्ती से प्राप्त जानकारी के अनुसार अभ्यर्थी के अंगूठे और फोटो के मिलान करने पर यह मामला सामने आया। इस मामले में पुलिस ने 3 व्यक्तियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है और गिरफ्तार अभ्यर्थी को जेल भेज दिया। बेगूसराय जिले के लाखो थाना क्षेत्र से पुलिस ने पिकअप से लगभग 200 कार्टन विदेशी शराब के साथ 4 तस्करों को गिरफ्तार किया है। मधुबनी जिले के खुटौना थाना में दर्ज शराब तस्करी मामले में फरार अपराधी राजू अंसारी को पुलिस ने उसके घर से गिरफ्तार किया है। कटिहार जिले के सहायक थाना क्षेत्र स्थित महानंदा शिविर के पास पुलिस ने छापेमारी कर 2 स्नैक तस्करों को 200 ग्राम स्नैक के साथ गिरफ्तार किया है। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज की सभी समाचार पत्रों ने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की अंतिम यात्रा से जुड़ी खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान ने इस खबर का शीर्षक लगाया है, मनमोहन सिंह पंचतत्वों में विलीन। दैनिक जागरण की सुर्खी है, 6421 विद्यालय सहायकों की होगी नियुक्ति। दैनिक भास्कर ने मौसम की खबर को प्रमुखता देते हुए लिखा है, 31 दिसंबर और नए साल पर कड़ाके की सर्दी के लिए तैयार हो जाएं। प्रभात खबर ने खेल की खबर को सुर्खी बनाते हुए लिखा है, ऑस्ट्रेलिया में 8वें नंबर पर शतक जड़ने वाले पहले भारतीय बने नीतीश। राष्ट्रीय सहारा की सुर्खी है, बीपीएससी 70वीं प्रारंभिक परीक्षा, बापू केंद्र की रद्द परीक्षा 4 जनवरी को होगी। आज अखबार लिखता है, बंगाल में भारतीय पासपोर्ट बनवा रहे बांग्लादेशी। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी अवकाश कुमार को पटना का नया वरीय पुलिस अधीक्षक बनाया गया है। गृह विभाग ने 62 आईपीएस अधिकारियों का किया तबादला। ईडी ने संजीव हंस के करीबी अभियंता सुनील कुमार के पटना और बोधगया स्थित 4 ठिकानों पर की छापेमारी, कई दस्तावेज बरामद। और मौसम विभाग ने कहा, अगले 2 से 3 दिनों में प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में शीतलहर चलने की संभावना। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन दोपहर बाद 3:10 पर प्रसारित किया जाएगा।